നമോ അരിഹന്താണം, നമോ സിദ്ധാണം, നമോ ആര്യാണം, നമോ വജ്രയാണം, നമോ ലോയി സബ്ബസാഹുണം. മംഗളം ഭഗവാൻ വീരോ മംഗളം ഗോതമോഗണി മംഗളം കുന്ദകുന്ദാദ്യോ ജൈനധർമ്മോസ്തു മംഗളം. സർവമംഗൾമാംഗല്യം സർവകല്യാണകാരകം പ്രധാനം സർവധർമാണാം ജൈനം ജയതു ശാസനം. മംഗൾമേ മംഗൾകരണം വീതരാഗ വിജ്ഞാൻ നമോ താഹി ജാതേ വൈ അർഹന്താദിമാൻ. കരിമംഗല കരിഹോ മഹാഗ്രന്ഥകരൻ കോ കാജ് ജാതേ മിലേ സമാജ സവ പാവേ നിജ പദരാജ്. അഷ്ടാനിക പരം പവിത്ര പർവ അനാദി നിധൻ ഹേ. അനാദി നിധൻ മേ തർക്ക് നഹീ ചൽതാ, കിസ്നേ ബനായാ, തർക്ക് നഹീ ചൽതാ. അനാദി അനന്ത് കീ ഭാവ ഭാസന ഹുവേ ബിനാ ജൈൻ ശാസന സമജ് മേ നഹീ ആതാ. ഹർ ചീജ് കാ കോയി ലോജിക് ഹോ, യേ ജരൂരി നഹീ. ജൈസെ വർഷാ ഋതു മേ ബീജ ബോനേ പർ ബീജ ജൽദി അങ്കുരിത ഹോതാ ഹൈ, ഉസീ പ്രകാര പർവ കേ ദിനോ മേ ആത്മാ മേ ബോയേ ഹുവേ സംസ്കാര കേ ബീജ ജൽദി അങ്കുരിത ഹോതേ ഹൈ. യേ ബാത് ശ്രീ ടൂഡർമൽ ജി കേ അഭിന്ന സാഥി ബ്രഹ്മചാരി രായമൽ ജി നേ ലിഖാ ഹൈ. പർവ മേ കിയാ ഹുവാ പാപ ഭീ ജൽദി ഫലിത ഹോതാ ഹൈ, ഔർ ധർമ്മ ഭീ ജൽദി ഫലിത ഹോതാ ഹൈ. ക്യോ കാ ക്യാ പ്രശ്ന ഹൈ, ജിസ്കോ ജ്യാദാ ക്യോ ഹോ ഉസ്കേ ലക്ഷണ ചതുർഗതി ഭ്രമണ കേ ഹൈ. ക്യോ കാ ജവാബ് തോ ആധുനിക സയൻസ് പർ ഭീ നഹീ ഹൈ, ഹോ സക്താ നഹീ ഹൈ. അഗ്നി ക്യോ ഗരം ഹൈ ഉൻസേ പൂച്ചോ, പാനീ ക്യോ ശീതല ഹൈ പൂച്ചോ. ഹേ ബസ് ഇസ്ലിയേ ഹൈ. ആജ് ഗുരുദേവ് ശ്രീ നേ ഭാവ പാഹുഡ് മേ തീൻ ഗാഥായ ചലി തീ, 112, 113 ഔർ 114. ഭാവ ബിഗഡനേ കേ ഉപായ ചാര സംഖ്യായേ ബതായി. ഭാവ ശുദ്ധി കെ ലിയേ സമ്യക് ദർശന സഹിത ഉത്തര ഗുണ കാ പാലന കരണ. മൂല ഗുണ കെ ബിനാ വോ പദ സുരക്ഷിത നഹീ രഹതാ, ഔർ ഉത്തര ഗുണ കെ ബിനാ വ്യക്തി ആഗെ നഹീ ബഢ്താ. ക്യോകി മൂല ഗുണ ഗായബ് ഹോ ജായേ തോ ഉസ് ഗുണ സ്ഥാൻ സേ ഗിർ ജായേ, ഔർ ഉത്തര ഗുണ നാ ഹോ തോ ജീവ ആഗെ ഔർ ആരോഹണ നഹീ കർ സക്താ. ഉത്തര ഗുണ പരമ്പരാസി യഥാഖ്യാത ചാരിത്ര കാ കാരണ കഹലാതാ ഹൈ. 114 മേ തത്വ കി ഭാവന ഭായി, വിഷയ തോ ബഹുത് അദ്ഭുത ഹൈ, ജീവൻ ലഗാനാ പഡേ. ലോക മേ കോയി ഭീ വിദ്യ സീഖനേ കേ ലിയേ വ്യക്തി കോ ജീവൻ അർപ്പണ കരനാ പഡതാ ഹൈ. ഇസ്ലിയേ അവ एक भव अनंत काल के लिए समर्पित करना है. यदि हम एक भव आत्मा के लिए समर्पित नहीं कर सकते तो फिर हमें सुखी होने का अधिकार नहीं है. विषय बहुत सूक्ष्म रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आ रहा है. कल यहां तक आ गए थे कि वो ज्ञानी सविकल्प से निर्विकल्प कैसे हुआ. निर्विकल्प की वांछा विकल्प को जन्म देती है. सत्य तो यह है कि अनुभूति की इच्छा अनुभूति से विरुद्ध तत्व है. इसलिए अनुभूति की इच्छा से अनुभूति नहीं होती, बल्कि ज्ञायक के प्रेम के जोर से प्रकट उपयोग अंदर समा जाता है. भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब तक कोई व्यक्ति थका ना हो तो करोड़ों कोशिश कर ले निद्रा नहीं आ सकती. करोड़ों कोशिश कर ले, प्राय ऐसा देखा जाता है कि बच्चे दिन में सो जाते हैं और रात्रि में जागते हैं, छोटे बच्चे। मां दिन में जागती है, रात में सोती है। वो करोड़ों प्रयत्न करने पर भी बच्चा खेलता रहता है, सोता नहीं, क्योंकि थका नहीं है। तो हमारा उपयोग अभी जगत से थका नहीं है। क्यों थका नहीं है? क्योंकि उसे जड़ की महिमा है, जगत की महिमा है। विकल्प कैसे मिटे? ये विकल्प विकल्प आमंत्रण है। समझ में आ रहा है? विकल्प परद्रव्य है और हमें परद्रव्य से द्वेष नहीं। इसलिए विकल्प रहे, मुझे विकल्प की क्या चिंता है? जब तक विकल्प परद्रव्य जैसा भासित ना होगा तब तक विकल्प उत्पन्न होते ही रहेंगे। हम विकल्पों को मिटाना क्यों चाहते हैं? क्यों मिटाना चाहते हो? सत्य तो यह है कि प्रकाश को कभी अंधकार की चिंता नहीं हुई कि अंधकार जाएगा या नहीं जाएगा। प्रकाश हो और वो प्रकाश ये चिंता करे, मैं उत्पन्न हुआ और अंधकार नहीं गया तो क्या होगा? कि कभी प्रकाश को अंधकार की चिंता होती ही नहीं। सत्य तो ये है कि प्रकाश ने अंधकार का चेहरा देखा नहीं। तो निर्विकल्प अनुभूति का उपाय स्वरूप का जोर है। ज्ञायक का ऐसा प्रेम कि ज्ञायक का ऐसा प्रेम कि ज्ञायक, फिर से सुनना, थोड़ी सी दिशा का अंतर है कि ज्ञायक के प्रेम का विकल्प तो हमें है लेकिन ज्ञायक का प्रेम नहीं है। हाँ, ज्ञायक के विकल्प का प्रेम है। यह सब वाणी में भी बोलते हैं हम कि ज्ञायक से प्रेम करो, ज्ञायक से प्रेम करो, ज्ञायक से प्रेम करो। तो ज्ञायक के प्रेम की चिंता है, ज्ञायक की चिंता नहीं है। अनुभूति स्वरूप प्रगट उपयोग अनुभव में कैसे उतरता है? यदि प्रगट उपयोग ये विचार करने लगे सविकल्प के काल में, चलो अब हम आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, हमारे बिना आत्मा सूना पड़ा है, समझ लो उसने हत्या कर दी आत्मा की। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चक्रवर्ती अपनी सेना को सम्मान देता है, सेना से चक्रवर्ती का सम्मान नहीं होता। चक्रवर्ती को एक अभिन्न संश्रुत रिद्धि होती है जिसके कारण बारह बारह योजन तक के जीवों की शब्द उनके कान में पड़ते हैं। सेना पड़ाव डाले हुई थी, सैनिक सोच रहे थे लड़ते हमें, चक्रवर्ती ये बनता है, लड़ते हमें, कन्या इनको मिलती है, वो भी 96,000, अपनी जिंदगी तो इसी में जा रही है। चक्रवर्ती के कान में ये बात पड़ गई। महापुरुष बल के द्वारा किसी का निग्रह नहीं करते बल्कि समाधान देते हैं। चाहता तो वो कह सकता था कि हम आपको बंद कर देंगे जेल में, ऐसी बकवास मत करना, ये तुच्छ पुरुषों के वचन हुआ करते हैं। चक्रवर्ती ने सेना को एकत्रित किया और कहा, मेरी उंगली मुड़ गई है, सीधी नहीं हो रही। उसमें छल्ला डाला, रस्सी डाली, पूरी सेना लगा दी, खोलो इसको। सेना लज्जित हो गई, उस उंगली को सीधी नहीं कर पाई और ऐसा कर दिया तो मानुष तो उत्तर पर्वत से टकराई जाकर, सब चरणों में गिर गई, स्वामी क्षमा करो। तुम्हारे चक्रवर्ती के कारण सेना का बल है या सेना के कारण चक्रवर्ती का बल है? चक्रवर्ती के कारण सेना का बल है। तो सच पूछा जाए तो ज्ञायक के कारण शुद्ध पर्याय का बल है। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ज्ञायक, ज्ञायक से ही तो शुद्धि निकलती है। ज्ञायक से शुद्धि निकलती है, इसका अर्थ क्या? कि ज्ञायक तो एक ऐसा निदान, कृपा निदान है। जब अपना पंचकल्याणक हुआ था तो शायद कुबेर भूल गए हों, कुबेर ने एक वाक्य बोला था, मानी सौधर्म इंद्र ने कहा तुम कुबेर हो, जाओ नगरी की रचना करो, धन वर्षा करो। तब कुबेर लज्जित होकर कहता है नाथ सच पूछा जाए तो कुबेर तो ये शुद्धात्मा है जिसमें अनंत काल तक रत्नत्रय की रतन निकलती रहेंगी तो भी कभी खाली होने वाला नहीं है। लेकिन यदि एक भी नदी समुद्र में ना मिले तो नदी सूख नहीं जाती, समुद्र सूख नहीं जाता। और समुद्र में नदियां खूब उफन उफन के गिरे तो समुद्र को हर्ष नहीं होता, समझ में आया? उसी तरह रत्नत्रय की निधियां और अनुभूति बार बार स्वरूप में जाकर मिले तो भी स्वरूप तो सम्राट की तरह बैठा रहता है, और अनुभूति ना भी हो तो भी स्वरूप को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वरूप अनुभूति से महान नहीं है। अरे ख्याल आ रहा है नहीं आ रहा है? स्वरूप तो स्वरूप है। एक चक्रवर्ती के पास कोई बार बार बाहर का कोई व्यक्ति आया भेंट देने रत्नों का थाल भरकर। अब उनका दूत पूछता महाराज ये थाल कहां रख दे, महाराज थाल कहां रख दे, मेरे सर पे रख दो। बोले इसको गाय के कचरे में डाल दो जाकर। और वो चक्रवर्ती खुद उठकर सिंहासन से उसको पकड़े थाल को, तो चक्रवर्ती नहीं हरिजन है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? उसी तरह कदाचित इस निर्विकल्प अनुभूति के काल में केवल ज्ञान भी हो जाए तो भी ज्ञायक तो चक्रवर्ती की भांति ऐसा का ऐसा बैठा रहता है। अरे सच पूछा जाए तो केवल ज्ञान के भिखारी को केवल ज्ञान नहीं होता, ज्ञायक के पुजारी को केवल ज्ञान होता है। अर्थात वो उपयोग जो केवल ज्ञान रूप होकर खिला उसकी कला क्या थी कि वो पहले बाहर से समटकर स्वरूप में समा गया, स्वरूप में समा गया, स्वरूप के प्रेम बस। अजपा से पहले जप होता है फिर अजप होता है, फिर जपने वाला स्वरूप में समा जाता है अभेद होकर। यदि भेद पड़ा रहे तो स्वरूप में ना समाए, ये तो खाली लोगों का काम है। जो कर्म चेतना के भार से जल रहे हैं उनको नहीं आएगा समझ में। कभी कभी विचार आता है कि हम जब मुमुक्षु नहीं थे तब भी व्यस्त थे और मुमुक्षु हो गए तब भी व्यस्त हैं। पहले लौकिक कार्य का भार था सर पर, अब पारलौकिक कार्य का भार हो गया सर पर। कर्म चेतना का डाइवर्जन हुआ है, कर्म चेतना नहीं मिटी। यदि मुझे अनुभव का भी भार हो तो फिर कैसा अनुभव? अनुभव क्यों? जब मेरे स्वरूप में भी श्रम मुझे करना पड़े तो मैं पहले ही अच्छा था कि जगत के श्रम करके चतुर्गति के दुख उठाता था। यहां भी श्रम करना पड़े तो आराम कहां है फिर? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और आराम नहीं तो सुख कहां है? ऐसा एक एक पहरा ऐसा है, सच कह रहे व्यक्ति डूब जाए हिलने का मन ना करे, ऐसा तत्व है। बनी तमे कहां गया था, कहां हो गया था कुछ पता है आपको? कि जो मतिश्रुत ज्ञान था वही मतिश्रुत ज्ञान स्वरूप का लक्ष्य करने लगा तो अतीन्द्रिय कहलाने लगा। ये हो गया था वस्तु विचार अध्यावते हो गया था ना। आगे बनी तमे लखियों के आत्मा तीन्द्री छे। अब मैं रिपीट करूंगा तो रिपीट करने के लिए 7 दिन चाहिए, इतना विषय है इसमें। यानी एक एक पहरा में एक एक ग्रंथ लिख जाए, इतना गहरा विषय है। किसी को टोडरमल जी की आत्मा समझना हो तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी का स्वाध्याय करें, ऐसा गजब का गहरा विषय है, कोई कल्पना भी ना कर सके इतना गहरा। अभी तो और जबरदस्त विषय हैं आगे, इतने गहरे विषय हैं कि अनुभवी ही इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, साधारण व्यक्ति कोई कैसे दे। बनी तमे लखियों के आत्मा अतीन्द्रिय छे, तेथे अतीन्द्रिय वडेज ग्राह्य थई सके। तो भाई श्री मन अमूर्तिक ने पण ग्रहण करे छे। प्रश्न समझ में आया? अरे प्रश्न समझ में आया नहीं आया, शिष्य ने प्रश्न किया। जो पत्र आया था, पत्र आया था, उस पत्र में यह प्रश्न था, हम तो मतिश्रुत ज्ञान वाले हैं और अतीन्द्रिय वस्तु को अतीन्द्रिय पर्यायी तो ग्रहण कर सकती है, इंद्रिय अतीन्द्रिय को कैसे ग्रहण करेगा? शब्द उस अनंत भाव वाले अमूर्त आत्मा को कैसे ग्रहण करेगा? तब टोडरमल जी उत्तर देते हैं कि मन अमूर्तिक पदार्थ ने पर ग्रहण करे छे। मन का विषय दोनों है, मूर्तिक भी और अमूर्तिक भी। इंद्रिय का विषय तो एकांत रूप से मूर्तिक ही है, इंद्रिय का विषय तो मूर्तिक है, और इंद्रियों का तो इतना भी विश्वास करने योग्य नहीं कि इंद्रिय स्वयं इंद्रिय को ही नहीं जानती। इस सभा में बैठा कौन ऐसा विचक्षण पुरुष है जिसने अपने नेत्र स्वयं अपने नेत्रों से देखे हो? है कोई व्यक्ति? जिह्वा बाह्य रस का सेवन तो करती है लेकिन जिह्वा स्वयं जिह्वा के रस को नहीं जानती। कर्ण बाह्य शब्द तो सुनते हैं लेकिन अंतर शब्द को नहीं सुनते, सुनते हैं कहीं। इंद्रियों के मुख ही बाहर खुलते हैं सारे के सारे, इसलिए इंद्रियों से दिखाई देने वाला दृश्य काल्पनिक है। सत्य तो ये है, जैसा जगत है वैसा हमें नजर आता नहीं और जैसा नजर आता है वैसा है नहीं, ये कल्पना है कल्पना। उस दिन हम आध्यात्मिक कहलाएंगे जिस दिन इस सभा से निकल कर जाएं तो जगत एक चलचित्र की भांति कल्पना नजर आए, दिवा स्वप्न। सड़कों पर मुर्दे घूम रहे हैं, मुर्दे इस मिट्टी को लादे हुए, मिट्टी के घरों में मिट्टी की ममता को लिए हुए मोही जीव घूम रहे हैं जगत में। उसमें है क्या दम? जिसे जगत विकास कहता है ये सब पुद्गल का षड्यंत्र है, पुद्गल का षड्यंत्र। तो इंद्रिय ज्ञान तो आत्मा को ग्रहण कर सकता ही नहीं, पर मन, मन के दो धर्म हैं। मन इंद्रिय जड़ को भी ग्रहण करता है और अमूर्तिक को भी ग्रहण करता है। कारण करे छे कारण के मति श्रुत ज्ञान नो विषय सर्व द्रव्य कया हता तत्वार सूत्र कया छे। तत्वार सूत्र मा कहूं के मत श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। संधि विच्छेद करेंगे ना इसका तो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। कठिन लग रहा है विषय? बोलो, नींद आ रही है क्या? बंबई वाले लोग थके बहुत रहते बेचारे, थक गए हो तो सो जाओ, बलजोरी का काम नहीं अपने यहां। आनंद भोगने आते हैं, सर को भारी करने नहीं आते। ऐसा करके ऐसा अंतर इतना है कि ऐसे सो जाओ कि कभी बाहर निकलने का अवसर नहीं मिले, अंदर ही अंदर सो जाओ। स्मरण करने की कोशिश मत कर, आराधना के नाम पर रटने की कोशिश मत कर, तत्व को जानने के नाम पर पढ़ने की कोशिश मत कर, क्योंकि मैं जानन स्वरूप हूं, जानन स्वरूप हूं। क्योंकि जो मेरा स्वभाव ही नहीं है उस पर मेरा जोर क्यों है? मैं जो हूं उस पर मेरा जोर क्यों नहीं है? ये तो बाहर की स्टार्टिंग की बातें हैं। आप जानते हो कोई मुनि जैसे ही सप्तम गुण स्थान में आता है भाई जी और आठवें गुण स्थान में पहुंचता है तो दस पूर्व का ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाता है। दस पूर्व का ज्ञान, आठवें गुण स्थान में पहुंचते ही दस पूर्व का ज्ञान होने लगता है। आप कहोगे प्रमाण बताओ, तो प्रमाण है तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने बताया कि शुक्ल ध्यान वाले को शुक्ले चाद्ये पूर्व विदे, मूल सूत्र है कि शुक्ल ध्यान पूर्व के ज्ञान वाले को होता है। तो एक अंगूठा टेक भी यदि स्वरूप में गया और शुद्धोपयोग में अंतर मुहूर्त रहा और श्रेणी चढ़ने लगा तो बिना प्रयत्न के दस पूर्व का ज्ञान हो जाता है। यहां रट रट के मर जाए, पढ़ पढ़ के बुद्ध हुए, ऐसा है। अपना नजर ना होना अपनी दृष्टि ना हो, ये तो गुरुदेव की ताकत थी, तो थोड़ा बल हमको भी आ जाता है। ये हमारा बल नहीं है, ये जिनवाणी का बल है वास्तव में देखा जाए तो। इसलिए वही मन, फिर से सुनना, मन माने, लोग समझते मन माने इधर इधर, या हार्ट को मन समझते हैं, वो मन तो बहुत द्रव्य मन भी सूक्ष्म है। या द्रव्य मन की बात नहीं, भाव मन की बात है। भाव मन माने प्रकट उपयोग, ये भाव उपयोग ये भाव मन ही है। ज्ञान पर्याय वर्तमान की छह उपशम ज्ञान जिसको कहते हैं, ये भाव मन है, भाव मन है। बणी तमे प्रत्यक्ष परोक्षनो प्रश्न लख्यो, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, कोई आज का ये अंतिम है पर तो आप पढ़ना स्वयं। पण भाई श्री सम्यक्तुमा तो प्रत्यक्ष परोक्षनो भेद नथी। सुनो सुनो सुनो, सम्यक्त तो प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान का भेद है, श्रद्धानो भेद नथी। अरे बहनों के समझ में आ रहा है, कोई ये कहे कि चौथे गुण स्थान वर्ती को सम्यक तो परोक्ष होता है, ऐसे हैं बहुत लोग, बहुत लोग हैं ऐसे जो कह रहे कि ज्ञान चौथे गुण स्थान में स्पष्ट सम्यक तो नहीं होता। ऐसा माने अभी दो तरह के सम्यक हो गए, एक स्पष्ट और एक अस्पष्ट। पागलों नी दुनिया छे, कमाल हो गया। परोक्ष होता होगा सम्यक तो कहीं, ये तो ज्ञान में भेद है ज्ञान के। और कई लोग ये भी कहते हैं कि वो शुद्धोपयोग चौथे गुण स्थान में नहीं होता, छठे सातवें से होता है। इसका भी डंके की चोट टोडरमल जी ने निषेध किया और इसी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में समर्थन किया कि चौथे गुण स्थान से शुद्धोपयोग होता है। कहते ना प्रमाण कहां है, ये क्लियर लिखा। ये तो 250 वर्ष पूर्व गुरुदेव से 200 वर्ष पूर्व ये बात कही है, तभी तो गुरुदेव श्री इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर रीझ गए। अद्भुत अद्भुत है, नाम भी क्या रखा है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, रहस्य है रहस्य। चौथो गुण स्थानी सिद्ध समान छाई सम्यक तो थई जाए छे। लोग अजब, ये किसी रत्था पुरुष के वचन नहीं है। किसके वचन है ये, टोडरमल जी, तेरे पंथियों के महागुरु, जो सत्य के खातिर जिनके राजा ने प्राण हर लिए लेकिन जिनके चेहरे पर विषाद नहीं आया, सत्य के लिए बलि वेदी पर चढ़ जाने वाले टोडरमल जी का वचन है, कोई साधारण व्यक्ति का वचन नहीं है। हेरा चौथा गुण स्थाने सिद्ध समान छाई सम्यक तो थई जाए छे। चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग से बाहर आ गया तब भी, क्योंकि तो सम्यक तो बराबर रहता है। जैसी सिद्धों की श्रद्धा है वैसे उस ज्ञानी की श्रद्धा है, श्रद्धा में कोई अंतर नहीं है, प्रतीति में कोई अंतर नहीं है। एक जगह टोडरमल जी ने ऐसा भी लिखा है कि सिद्ध अनंत काल तक स्वरूप का आनंद भोगेंगे, ये सब श्रद्धा का कमाल है, ऐसा वचन लिखा है टोडरमल जी ने। क्या जैन दर्शन है, क्या अद्भुत जैन दर्शन पाया है। सिद्ध जब बनेंगे, वो जो सिद्ध बनेंगे वो तो फल रूप बनेंगे। अभी वर्तमान में, वर्तमान में वो ज्ञानी जीव की प्रतीति और सिद्धों की प्रतीति एक जैसी है। यद्यपि यद्यपि आत्मानुशासन ग्रंथ में और कर्णानियोग के ग्रंथों में कदाचित अवगाढ़ और परमावगाढ़ की दृष्टि से ज्ञानी के और केवली के सम्यक्त में अंतर किया है, लेकिन वो केवल ज्ञान गम्य विषय है। भैया सुनाम समझ में आ रहा है, क्या नाम है, समर्थ, समर्थ। हम बेचारा क्या करें, लंदन में तो पढ़ रहा है, सब छोड़कर आ जाओ, वहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इतना तो आपके माता पिता ने आपको यहां करके दे ही दिया, इतना मैं तो कहता हूं एक एक व्यक्ति पर इतना है यहां पर कि सात सात पीढ़ी खाएगी, तो तो फिर बैठ के केवल ज्ञान लो ना आराम से, काय को भटक रहे हो इधर उधर। सब कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, पूरे विश्व में अनंत अनंत बार भ्रमण किया है व्यक्ति ने, पूरी क्षेत्र परावर्तन में आता है, एक एक प्रदेश में अनंत अनंत बार जन्मा है। कहां जाए व्यक्ति, जो सुख अंदर, लोक में कहावत है मन दुखी होना, तो दुखी व्यक्ति को जिसको 10 दिन से भोजन नहीं मिला उसको चांद पर ले जाकर रख दो तो वो क्या खोज कर लाएगा वहां। भूखे को रोटी चाहिए, चांद नहीं चाहिए। तो इस संसार में जीव दुखी है, जड़ की खोज में सुख नहीं है। हमारे आचार्य भी खोज कर सकते थे, उन्होंने खोज क्या कर सकते थे, उन्होंने तो खोजा हुआ ही है वो, लेकिन वो जानते थे कि पुद्गल की खोज में मुझे सुख मिलने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने उसमें दिमाग नहीं लगाया अपना। तिथि सम्यक तो मात्र यथार्थ श्रद्धान रूपज है, ध्यान देना, सम्यक तो शुद्धोपयोग के काल में उत्पन्न होता है, बराबर फिर लगातार रहता है। शुद्धोपयोग और सम्यक तो जुदा जुदा छे, ये दोनों अलग अलग चीज है। आत्म अनुभव और सम्यक तो दोनों अलग अलग चीज है। नहीं आया समझ में, नहीं आया? परिधि अनुभव है वो मुख्यतया ज्ञान गुण की पर्याय है, क्योंकि अनुभव हुआ स्वरूप का तो उसमें कौन रमा, ध्यान में कौन रमा, कौन रमा ध्यान में, ज्ञान, कौन सा ज्ञान जो पहले सविकल्पात्मक था, वही ज्ञान स्वरूप की महिमा के अतिरेक में अंदर समा गया। अरे ख्याल आ रहा है नहीं आ रहा है? सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है पूज्यपाद स्वामी ने, ध्यानम सर्वत्र एव ज्ञानम न अतिक्रम्यति। इसका अर्थ क्या है? ध्यान सर्वत्र ही ज्ञान का अतिक्रमण नहीं करता। लोक में ही कहा जाता है जैसे बच्चा भोजन कर रहा हो तो मां ये कहती है बच्चे को ध्यान से भोजन करो। ध्यान से करेगा या जबान से भोजन करेगा? एक व्यक्ति साइकिल चलाता है तो उसका सिखाने वाला ट्यूटर उसको कहता है ध्यान से चलाओ। ध्यान से चलाएगा या पैरों से चलाएगा? हर चीज में ध्यान, ध्यान भटका, जीव लटका, अटका। सत्य तो ये कि अभी ध्यान माने ज्ञान, सच पूछा जाए तो अंदर ध्यान नाम का कोई गुण नहीं है। परिधि फिर से सुनना, जैसे जैसे पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, फिर से सुनना, तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तो गुण है, पर शब्द नाम का गुण पुद्गल में नहीं है, बल्कि दो पुद्गल के संघर्ष से शब्द बनता है। शब्द पर्यायगत योग्यता है, शब्द अंदर गुण नहीं है। उसी तरह ज्ञान के उपयोग के स्वरूप में थमने को ध्यान कहते हैं, अंदर ध्यान नाम का गुण नहीं। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो, नहीं तो बता दो। अब 47 शक्तियों में कोई ध्यान नाम की शक्ति हो तो ऐसा करके। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये सब गुण तो हैं और ज्ञान गुण है, तो फिर ध्यान की चर्चा क्यों चल रही है? ये कि वो ज्ञान, वो उपयोग, उपयोग कहो, ज्ञान कहो, मन कहो, भाव मन कहो, एक ही बात है। भाव मन कहो, उपयोग कहो उसको, और वो ही उपयोग जब स्वरूप को विषय बनाने लगता है तो उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान तो हर किसी का चल रहा है, आर्द्र रौद्र चल रहा है, प्लानिंग में व्यक्ति का माथा चल रहा है। अभी व्यक्ति यहां बैठे बैठे, हम मुंबई वाले हैं क्या करें, बहुत मुश्किल है। मैं सच कह रहा हूं, जो जितनी ज्यादा जगत की प्लानिंग कर रहा है वो तो कर्मोदय उसे देखकर हंस रहा है। रामचंद्र जी का दूध से अभिषेक होने वाला था, स्वर्ण कलश भरे हुए थे, सोने की कलश, सौभाग्यवती स्त्रियां उनका अभिषेक कर रही थी, तैयारियां चल रही थी राजपाट की। पिता श्री जनक ने, दशरथ ने कोने में बुलाया, ऐसा है भाई, अभिषेक तुम्हारा नहीं भरत का होगा, तुम्हें बन जाना है। राम के चेहरे पर सिकन भी नहीं आई। बोले पिताश्री, मेरा नाम तुमने राम जो रखा है, राम माने जो रमेशो राम, मुझे वन में रहूंगा तो भी मैं रमूंगा और महल में रहूंगा तब भी मैं रमूंगा, तुम्हारा पुत्र जो हूं ना मैं, बस प्लानिंग तो राज्याभिषेक की थी। और गए वन तो पद्म पुराण में ऐसा लिखा, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम, हे भवितव्यता तेरी शक्ति अलंगनी है। बाहर जो संयोग है, जिसकी चिंता में मैं दिन रात जला जा रहा हूं, जिसकी प्लानिंग में मैंने आत्मा का नाश किया है, जो उपयोग स्वरूप को अंतर मुहूर्त ग्रहण करे तो केवल ज्ञान हो जाए, उस उपयोग को पंचेंद्री विषय कषायों में जला रहा है। एक चक्रवर्ती बारिश हो रही थी, महल के ऊपर बैठा था, उसकी पत्नी ने देखा एक व्यक्ति पानी की धार में लकड़ी इकट्ठी कर रहा है, तो उसकी पत्नी चक्रवर्ती से कहती है, स्वामी मुझे शोभा नहीं देता कि आप इस नगर के चक्रवर्ती और कोई इतना निर्धन कि पानी में लकड़ी बीने और फिर अपना जीवन यापन करे, इसकी गरीबी मिटाओ। उन्होंने उसको बुलाया तो अकेला नहीं आया, पत्नी को साथ लेकर आया, क्योंकि वो तो भोला वाला था। तो पहली बार घुसा चक्रवर्ती के महल में, कांप रहा। यदि कोई नया व्यक्ति पहली बार डाइनिंग टेबल पर बैठे तो चम्मच को मुंह की जगह आंख में मार ले, इसको एबनॉर्मलिटी कहती है, ये मनोविज्ञान है, ऐसा चिकने फर्श में फिसल जाए, खाई नहीं पाए, क्योंकि उसे अभ्यास नहीं। कांप रहा चक्रवर्ती के रत्नों के महल में खड़ा। उन्हें बोलो तुम्हें क्या चाहिए। पत्नी से बोला तुम ही मांग लो, तुम ही शिकायत की पिंड हो, बाद में तुम घर जाकर लड़ोगी हमसे, क्या मांग लिया क्या नहीं मांग लिया। और उसने दिमाग चलाया, चतुर थी ना, पाप के उदय में देने वाला तैयार भी हो तो मांगने वाली की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, तो पाप के उदय में मांगा भी ना जाए। उनने कहा, अब दिमाग लगाया, और जो साधारण लोग होते हैं वो तो बिचारी, उनको औरतों को क्या है, यही समझ में आता, सिलेंडर खत्म हो गया, घर में झाड़ू टूट गई है, वो बिचारी क्या करे, घर की बिचारी महिलाएं, ये चाहिए वो चाहिए। हाथ जोड़कर बोली, महाराज कई दिन से इनको कह रही हूं मैं, घर की झाड़ू टूट गई, एक बढ़िया सी झाड़ू दे दो, ऐसी दो, इस बार टूटे नहीं, क्योंकि आप चक्रवर्ती जो हो। बोले और कुछ मांग ले। बोले ना, झाड़ू ही चाहिए, और मैं क्या मांगू, सब है हमारे घर में, एक झाड़ू लाकर नहीं देते, ये झाड़ू दे दो, झाड़ू टूट गई है। उन्होंने एक सुंदर सी झाड़ू दे दी। बाद में उन्होंने बोली, महाराज जी मांगे क्यों नहीं, ये तो उदाहरण है, उसी तरह इसको स्वरूप के लक्ष्य से अंतर मुहूर्त करे तो केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, लेकिन ये मूर्ख उस उपयोग से पंचिंद्री विषय कसाई की झाड़ू मांगता है। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। ये उसकी बात नहीं है, वो तो उससे ज्यादा यहां हम सब मूर्ख बैठे हुए हैं। किसी व्यक्ति विशेष को मूर्ख कहे तो लड़ बैठे, ऐसा ही है। ये जो दिखाई दे रहा है, ये सब टाई लगा लगा के जो ऑफिसों में जा रहे हैं, ये कर्म चेतना के भार को ढो रहे हैं। है क्या कुछ धरती पे विजय करने जा रहे हो क्या, दो चार कर्म नष्ट हो गए हैं क्या, है ये सब आत्मा का पतन है। सत्य तो ये है, एक बार वो ही मति श्रुत ज्ञान से तू स्वरूप को लक्ष्य कर तो तू निहाल हो जाए। अरे तेरे घर में देवता आएंगे, देव तेरी, इसलिए तीर्थंकर जो होते हैं ना, उनके वस्त्राभूषणों की व्यवस्था स्वर्ग से देव करते हैं, सौधर्म इंद्र लाता है, इतना पुण्य होता है। ये निर्दोष पुण्य भी उनको होता है जो स्वरूप की आराधना करते हैं, जो स्वरूप से च्युत होकर कर्म चेतना की आग में जलते हैं, उनका उदय भी ऐसा विपरीत हो जाता है कि लो तुम्हें व्यस्त रहने की आदत है तो लो व्यस्त रहो, ऐसा है। તેથી સમ્યક તો માત્ર યથાર્થ શ્રદ્ધાન રૂપ જ છે, શુભસુ કાર્ય કરતો પણ રહે છે. તેથી કાંઈ યથાર્થ પદાર્થ શ્રદ્ધાન ના હોય એમું હોતું નથી. પરિણામ તો ગુણસ્થાન પ્રમાણ હોંગે, શુભશુભ ભાવ તો હોતે રહેંગે ઉસકો અભી. તેથી તમે જે લખ્યું હતે કે નિશ્ચય સમ્યક પ્રત્યક્ષ છે અને વ્યવહાર સમ્યક પરોક્ષ છે તે એમ નથી. સમ્યક્તના તો ત્રણ ભેદ છે. કોઈ એ સમજે કે વ્યવહાર સમ્યક્ત સુનો 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 પરોક્ષ હે ઓર નિશ્ચય સમ્યક્ત પ્રત્યક્ષ હે એમ નથી, એસા નહીં હૈ. સચ વાત પૂછા જાય તો વ્યવહાર સમ્યક્ત તો સમ્યક્ત જ નથી, વો તો રાગ છે. ક્યો? ક્યોંકિ વો તો સાત તત્વ કા ચિંતન હૈ, દેવગુરુ ધર્મ કા વિશ્વાસ હૈ, વો રાગ રૂપ હૈ. ઉસકો વ્યવહાર સમ્યક્ત કહેને મેં ક્યો આતા હૈ કે જિસકો નિશ્ચય સમ્યક્ત હુઆ ઉસકો પૂર્વચર વ્યવહાર મેં જો દેવગુરુ કે દેવગુરુ સચ્ચે દેવગુરુ કી ઉપસ્થિતિ મેં જો ઉસકો સ્વરૂપ કી શ્રદ્ધા હુઈ થી તો વો વ્યવહાર કહેને મેં આયા. પર સમ્યક્ત તો પ્રત્યક્ષ હી હોતા હૈ. આગે ત્રણ ભેદ છે, તેમાં ઉપસમ સમ્યક્ત અનિચ્છાયિક સમ્યક્ત તો નિર્મળ છે. એ દોનો હી નિર્મળ હૈ. ફિર સે સુનના, ચાહે ઇચ્છાયિક સમ્યક્ત હો યા ઉપસમ સમ્યક્ત હો, યે સમ્યક્ત ઉત્પન્ન વાલે કો માલુમ નહીં હોતા. ફરીથી મુજે પતા હૈ, લોગ પ્રશ્ન કર સકતે હૈ, સારે દિન મેરે પાસ ફોન આ રહા હૈ આજકલ, લોગોં કે પ્રશ્ન આતે ભરા રહેતા ફોન પ્રશ્નો સે કે ભાઈ ક્યા કહે રહે હો આપ, કેસી બાતે કર રહે હો. કે હા, પ્રમાણ સહિત ઉત્તર. જિસકો અનુભૂતિ હુઈ, ફિર સે સુનના, સ્વરૂપ કી ઓર સ્વરૂપ કા અનુભવ હુઆ તો ઉસ સમય કર્મ કા ઉપસમ હો રહા યા છય હો રહા હૈ ઉસે માલુમ હૈ ક્યા? ઉસે તો માલુમ નહીં હૈ. એક વાત ઓર, સમ્યક્ત ઉત્પન્ન હોને પે તો જ્ઞાની કો માલુમ પડતા હૈ, લેકિન કદાચિત સમ્યક્ત છૂટ જાય તો માલુમ ના ભી પડે. ફરીથી ક્યા હુઆ, કિસી જીવ કો શુદ્ધોપયોગ કે કાલ મેં સમ્યક્ત ઉત્પન્ન, જબ ભી પ્રથમ વાર સમ્યક્ત હોગા તો શુદ્ધોપયોગ કે કાલ મેં હી હોગા, એ નિયમ હૈ. શુદ્ધોપયોગ છૂટને પર તો માલુમ પડેગા કે મેં શુદ્ધોપયોગ સે ચ્યુત હો ગયા, લેકિન કદાચિત સમ્યક્ત સે ચ્યુત હો જાય તો જરૂરી નહીં હૈ ઉસે માલુમ પડી જાય કે મેં સમ્યક્ત સે ચ્યુત હો ગયા હું. ક્યોંકિ ઉસ સ્થૂળ શ્રદ્ધા તો વોહી બની રહેતી હૈ બહાર મેં, અંદર હી અંદર કહીં એસા આયા હૈ ક્યા ગ્રંથો મેં કા આયા હૈ. કિસી જીવ કો સમ્યક્ત હોને કે બાદ ભી છ કારણ ગ્રંથો મેં ગિનાયે હૈ જિસસે જીવ સમ્યક્ત સે ભી ચ્યુત હો જાતા હૈ, જિસસે સમ્યક્ત કે સમ્યક્ત સે ભી છૂટ જાતા હૈ જીવ. વો મેં વિષય લુંગા તો અલગ વિષય હો જાયેગા પૂરા, એસા હૈ. લેકિન કદાચિત માલુમ ના ભી પડે, શુદ્ધોપયોગ સે ચ્યુત હોગા તો માલુમ પડેગા. તો મુજે ઉપસમ સમ્યક્ત હુઆ યા છાયિક સમ્યક્ત હુઆ હૈ ઉસ સમ્યક્ત કો નહીં માલુમ. વો તો અવધિ જ્ઞાની બતા દે કે ને ઉપસમ સમ્યક્ત હુઆ હૈ યા ને છાયિક સમ્યક્ત હુઆ હૈ. ઇસ કાલ મેં તો છાયિક સમ્યક્ત હોતા હી નહીં હૈ. છાયિક સમ્યક્ત તો નિર્મળ છે, કેમ કે તે મિથ્યાત્મના ઉદય રહિત છે, તથા છય ઉપસમ સમ્યક્ત સમળ છે. સુનો સુનો સુનો, છય ઉપસમ સમ્યક્ત કો સમળ કહા વો ભી કેવલ જ્ઞાન કી વિવક્ષા સે હૈ. છય ઉપસમ સમ્યક્ત ઇતના સમળ નહીં હૈ કે વો મિથ્યા દ્રષ્ટિ કહેલાએ. અરે ભૈયા, સમજ મેં આ રહા હૈ, કઠિન લગ રહા હૈ વિષય, યુવા વર્ગ કો કઠિન લગ રહા હૈ. ભૈયા એક વાર ઇસમે જીવન લગાના પડે, પ્રતિજ્ઞા લેકર જાઓ, પ્રતિજ્ઞા લેકર. જીવન બહુત થોડા હૈ, સબ ગુરુદેવ શ્રીને અર્થ ખોલે હૈ. ચલ મલ અગાળ દોષ લગતે હૈ, લેકિન વો એસા દોષ નહીં હૈ કે વો અનુભૂતિ સે ચ્યુત હો જાય યા પ્રતીતિ સે ચ્યુત હો જાય. યદ્યપિ છાયુપસમિક સમ્યક્ત કો સમલ કહા, પર વો એસા સમલ નહીં હૈ કે વો મિથ્યાત્વ કહેલાએ. તીનો હી સમ્યક્ત કહેલાતે હૈ. और छायुपसमिक सम्यक्त तो ऐसी कमाल की चीज है, बनारसी दास जी ने लिखी कि एक व्यक्ति छायुपसमिक सम्यक्त वाला दिन में कितनी बार सम्यक्त से मिथ्यात और मिथ्यात से सम्यक्त में जाता है। बनारसी दास जी ने मूल छंद लिखा, छायुपसमी समकिति की जैसे लोहे की संडासी, लोहार की जो संडासी होती है लोहार की, क्षण माही आग में और क्षण माही पानी में, ऐसा भी होता है। मे बी पॉसिबल, जरूरी नहीं है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो सम्यक्त से मिथ्यात और मिथ्यात से सम्यक्त दिन में कितनी बार करे, लेकिन स्थूल श्रद्धा स्वरूप की रहती है, वो उसे मालूम नहीं पड़ता। अमूर्तिक परिणाम है ना, यहां तो सारी बात चिट्ठी है, अद्भुत सूक्ष्म चिट्ठी है। आप इसको घर जाकर, मैं हाथ उठाकर पूछवाना चाहता हूं, अध्यात्म संदेश गुरुदेव श्री का प्रवचन किस किस ने पढ़ा, एक पेज भी इन आठ दिनों में? एक बहन हाथ उठा रही है इधर पूरी सभा में, और इधर पुरुष वर्ग में भाई श्री, वो तो बहुत गहरी स्वाध्यायी है। अच्छा, और कोई? पंडित जी आप पढ़ने के लो, यहां से छूटते हैं तो जल्दी भागते हैं ऑफिस में, आपको पढ़ने की पड़ रही है। जीवन लगाना पड़े, जीवन लगाना पड़े भाई, इसके बिगर कुछ नहीं है। करोड़ों छोड़ जाना, करोड़ों दूसरे खाएंगे उसको, कमाओगे तुम भोगेंगे दूसरे। बहुत अभी समय नहीं है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि विदेशों में अरबों खरबों कमाई किसी कंपनी वाले ने, और बाद में देह में रोग हो गया तो उनसे लोग पूछते हैं, करोड़ों खरबों रुपए कमा लिए तो बढ़िया अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में ही तो एडमिट कर दोगे, कोई आयु को तो नहीं बचा लेगा कोई जीव। लाशों की दुर्गतियां हो रही है लोगों की, वहां दिल्ली में अपोलो में इधर उधर व्यापार चल रहा है रोग इलाज के नाम पर, सांस चलेगे साहब आईसीयू में है, माने बड़ा पुण्यवान है। अरे साहब, और बड़े बड़े हरे हरे चोगे वाले ऐसा ऐसा करके फुस कर रहे हैं, चल रहे सांस चल रहे। अच्छा, चाले छे। और उन्हें मालूम है कि यदि हमने 12 बजे के बाद तक ये कहते रहे कोशिश कर रहे तो एक एक दिन का 1-1 लाख रुपया है। बोलो आप, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। अरे भाई, ये अधिक पैसा नहीं कमाया होता तो सच में ऐसी दुर्गति नहीं करवाते आप अपनी। मैं कह रहा हूं, कोई 90 वर्ष का व्यक्ति, 80 वर्ष का, 75 वर्ष का, उसकी किडनी खराब हो गई, अब किडनी बदलवाकर कब कितने जी लेगा वो, किसी दूसरे की किडनी लगवाकर कितना जी लेगा वो। शरीर के लिए तो छांच और रोटी चाहिए और ज्यादा नहीं, इससे ही देह चल जाएगा, बस बहुत है। ये आत्मकल्याण के मार्ग में लगना, बाकी तो ये वर्तमान स्थिति, वर्तमान राजनीति, वर्तमान विश्व की परिस्थिति ऐसी है कि मुमुक्षुओं को ही कहो, बहुत बड़ा सहारा है ये तत्व ज्ञान। ये समझ लो, इस काल में ये तत्व ज्ञान मिल गया हमको तो ऐसा समझ लीजिए, वो कैलाश चंद जी साहब कहते थे, पवन जी के पिताश्री ऐसा कहते थे कि इस पूज्य गुरुदेव श्री ने वर्तमान पंचम काल, वर्तमान भरत क्षेत्र को विधेय क्षेत्र बना दिया है और चौथे पंचम काल को चौथा काल बना दिया है। ये अपन जो जीवन जी रहे हैं ये चौथे काल जैसा जी रहे हैं, ऐसा है, साधारण बात नहीं है। उनकी महिमा नहीं आनी चाहिए शराबी कबाबियों की, छोड़ो उन चिंताओं को। केम के सम्यक्त मोहिनीयना उदय सहित छे, मिथ्यात्व की तीन प्रकृति छे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो जहां चलमल अगाढ़ दोष लगता है वो देशघाती प्रकृति कहलाती है, तो उस समय वो ज्ञानी को पता नहीं है, ये अंदर ही अंदर होता रहता है स्वयं, द्रव्य कर्म दिखाई थोड़ी देते हैं। पर असम्यक्त मा प्रत्यक्ष परोक्ष ना कोई भेद तो छे नहीं। विषय बहुत है, अब मैं मात्र 5 मिनट में, क्योंकि 10:30 बजे समाप्त करना है, पूरी चिट्ठी के हर पहरा में क्या क्या टोडरमल जी साहब ने फरमाया है वो मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। इसमें, इस चिट्ठी के अंदर। तो बाद के जो पहरा है इसमें ये बताया कि प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान के भेद हैं, सम्यक्त्व के भेद नहीं। फिर आगे इसमें वर्णन आया और आगे, तो फिर वो आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष है या परोक्ष है, वो आत्मा का अनुभव। तो आचार्य कहते हैं कि वो मन ज्ञान अब अन्य विचार नहीं कर रहा, अब मन ज्ञान संपूर्ण से समट कर मन स्वयं अमूर्तिक है, तो स्वरूप में चला गया। फिर से सुनना, तो स्वरूप में चला गया तो उस स्वरूप का जो वेदन हो रहा है वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। एक उदाहरण दिया टोडरमल जी ने, शिष्य ने तुरंत प्रश्न उठाया कि साहिब आप कहते हो कि मति श्रुत ज्ञान परोक्ष है, तो फिर अनुभूति भी परोक्ष हुई। तो टोडरमल जी कहते तुमने कहा सो तो सत्य, कि सही है मति श्रुत ज्ञान परोक्ष है, बात सही है, लेकिन इंद्रियों का तो कोई काम नहीं वहां पर। जो मति श्रुत ज्ञान है, भाव श्रुत ज्ञान है, वो स्वरूप में लगा तो उस समय आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते, आत्मा के प्रदेश दिखाई नहीं देते, एक एक गुण पृथक पृथक दिखाई नहीं देता जैसे केवली को नजर आता है। बारहवें गुण स्थान तक आत्म अनुभवी को आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होती। अरे कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रदेश का अर्थ है कि जो अमूर्तिक चैतन्य आत्मा के जो प्रदेश हैं वो दिखाई नहीं देते। जैसे एक अंधे व्यक्ति मिश्री खाए तो मिश्री का रंग नहीं जानता लेकिन मिश्री का स्वाद जानता है, ये उदाहरण दिया टोडरमल जी ने। तो अंधे व्यक्ति को जो मिश्री का स्वाद आया वो प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? अरे बोलो, प्रत्यक्ष है, पर वो रंग दिखाई नहीं दे रहा, उसको ऐसी भाषा कहेंगे स्वाद में प्रत्यक्ष है। क्या बोला? उसी तरह अनुभव के काल में वो आत्मा बार चौथे गुण स्थान से लेकर बारहवें गुण स्थान तक की बात है, क्योंकि छाई ज्ञान तेरहवें गुण स्थान से होता है, तो बारहवें गुण स्थान तक वो आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है शुद्ध उपयोग के काल में। सातवें से बारहवें तक तो ध्यान अवस्था ही है पूरी, और चौथे और पांचवें में कभी कभी होती है, वो भी टोडरमल जी ने लिया है। थोड़ा सा समय निकालना पड़े, थोड़ा सा पिकनिक का समय निकालकर इधर लगाओ। हम आपको सही कह रहे हैं, लोगों को लगता नहीं भैया चलो घर में इतना दुखी है कि शनिवार रविवार होते ही होटलों में भागता है, उस शनिवार रविवार स्वस्थ मनोरंजन करो बैठकर, जिस दिन घर आपका सर्वार सिद्धि हो जाएगा उस दिन मोक्ष आपके घर में उतर ही आएगा। ऐसा है, अभी घर तो नरक हो रहे और चर्चा आत्मा की कर रहे, वो समस्या है। घर में वातावरण शुद्धात्मा का हो, शुद्धात्मा की चर्चा हो, दूसरी कोई चर्चा ना हो, फिर देखो देव को भी आने में मजबूर हो जाए देव कि अरे ये सर्वार सिद्धि नीचे कैसे है, ऐसा देव विचारने को मजबूर हो जाए। लेकिन बिना ऐसी लगन लगे, बिना ऐसी रुचि लिए कितने भी चीख लो, कितना भी कह लो, अंदर तक जब तक व्यक्ति को नहीं जचती बात नहीं जचती, ऐसा लगता है। ये वर्णन आया। फिर बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में आप ए प्रमाणे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण ना भेद का, और सुनना अवधि ज्ञान और मन पर। एक शिष्य ने प्रश्न उठाया कि अवधि ज्ञान और मन पर ये ज्ञान देश प्रत्यक्ष है तो फिर इसमें अनुभूति होती है नहीं होती? कि देश प्रत्यक्ष होने पर भी मन पर ये ज्ञान और अवधि ज्ञान का विषय पुद्गल छे। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए अवधि ज्ञान और मन पर ये ज्ञान से अनुभूति का कोई संबंध नहीं है। हम लोग सोचते ना हे भगवान हमें ऐसी रिद्धि हो जाए दूसरे के मन की बात पता पड़ जाए। भाई साहब बढ़िया है, नहीं पता पड़ती, वरना आप कहोगे कि सारी दुनिया तुम्हारे विषय में क्या सोचती है, माता पुरुष लोगे अपना। अवधि ज्ञान मन पर ये ज्ञान का आत्मा की साधना से कोई संबंध नहीं है। सब केवल ज्ञान कि केवल अनुभूति तो पहले ही हो गई ना, केवल ज्ञान तो फल रूप होगा, अब तेरे पास पूंजी कौन सी है कि मति श्रुत ज्ञान। इसलिए जो अनुभूति होगी, और सुनना सच्चा परोक्ष ज्ञान भी अनुभूति के काल में ही जन्म लेता है, क्योंकि अज्ञानी को साचा परोक्ष भी नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष परोक्ष सम्यक ज्ञान नो भेद छे, मिथ्या ज्ञान का भेद नहीं, तो सच्चा परोक्ष ज्ञान भी ज्ञानी को ही तो होगा, क्योंकि जब वो अनुभव के काल से बाहर आ गया तब वो जो अनुमान ज्ञान लगाएगा वो साचा अनुमान ज्ञान होगा। वो कैसे होता है इसके लिए पूरा 1 घंटे का पीरियड चाहिए। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये 5 साचे ज्ञान भी ज्ञानी को ही है, अज्ञानी को नहीं। ये चर्चा टोडरमल जी ने इसको सिद्ध किया है कि ज्ञानी का स्मृति कैसी, प्रतिविज्ञान कैसा, अनुमान कैसा, उसका आगम ज्ञान कैसा। ये इसके बाद सविकल्प निर्विकल्प में जाणवानी विशेषता न थी, ये बहुत जबरदस्त प्रकरण है। जब वो सविकल्प के काल में था तो ज्यादा जानता था ऐसा नहीं है, और जब निर्विकल्प हो गया तब ज्यादा जानने लगा ऐसा नहीं है, बल्कि जब सविकल्प के काल में था जब अनुभव नहीं था, और जब निर्विकल्प हुआ तब अनुभव बढ़ा, आनंद बढ़ा, जानकारी विशेष नहीं हुई। अरे कठिन लग रहा है, कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन आपको तो यहां समझ लो ऐसा लगता है पार्ला मंदिर कि सोनगढ़ उड़ के यहां पर आ गया हो। यहां ये गुरु मैंने देखा जो सीडी सुनते हैं गुरुदेव की इतनी शांति से चलती है कि ऐसा लगता है कि यहां बिल्कुल गुरुदेव बोल रहे हों साक्षात आपको। मैं तो कहता हूं जब ये आपका अष्ट पाउड खत्म हो जाए तो आप अध्यात्म संदेश यहां गुरुदेव श्री का प्रवचन लगा देना, उसमें उसका नाम ही रख देना रहस्यपूर्ण चिट्ठी शिविर पूरा, और वो डायरेक्ट गुरुदेव श्री का सुनना। सच बात तो ये है कि इस काल में गुरुदेव श्री का प्रवचन जिसके समझ में आ गया वो मोक्ष जाने के लिए पर्याप्त है, ऐसा है। बाकी हम जो चर्चा कर रहे हैं ये तो उन्हीं के बल से कर रहे हैं, हमारी कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हम कोई विशेष चर्चा कर सके, ये तो एक बांचना है ऐसा। इतनी किसी की ताकत भी नहीं कि कौन इसका खुलासा करे रहस्यपूर्ण चिट्ठी का। इतना है आगे इसमें, फिर एक प्रश्न और उठाया है आगे कि शुक्ल ध्यान में भी पृथकत्व विचार विचार, और वो थे ना दो शुक्ल ध्यान के 2 पाई, उसमें भी विचार बताए हैं, उसमें भी पर द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होता है ऐसा बताया है, और आप ये कह रहे हो कि 4थे गुण स्थान में निर्विकल्प है। तो टोडरमल जी ने समाधान किया, कथन 2 तरह के होते हैं, एक सूक्ष्म एक स्थूल। जो वो अबुद्धि पूर्वक विचार बताए वो केवल ज्ञान गम्य है, बुद्धि पूर्वक तो स्वरूप का ही ज्ञान, स्वरूप में ही रमणता और स्वरूप का ही विश्वास ज्ञानी को होता है। इस तरह से ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी अति संक्षिप्त में यहां से प्रस्तुत ही है। बस ये चूंकि अंतिम स्वाध्याय था, जो कुछ भी मैंने कहा वो मेरा बल नहीं था, जो भी हमने थोड़ा बहुत गुरुदेव को पढ़ा है, हो सकता है मेरे से ज्यादा आपने गुरुदेव श्री को पढ़ा हो, ऐसा हो सकता है। वहां मंगलायतन में कोशिश रहती है कि गुरुदेव श्री का स्वाध्याय आदि डेली करते हैं। समझ लीजिए इस पर्याय में भाव तो यही है कि केवल इसी मार्ग में रहें, दूसरा मार्ग कोई सुहाता नहीं है। कदाचित मेरे 6 उपशम ज्ञान या प्रमाद वश कोई कुछ वाक्य अन्यथा निकला हो तो आप उसे सुधी सुधार कर ग्रहण करना। जो भी मैंने सत्य कहा वो गुरुदेव का समझना, और जो भी मेरे प्रमाद वश अन्यथा निकला हो तो वो मेरा समझना और उसको सुधार कर ग्रहण करना, और इस मार्ग में लगे रहना। इस मार्ग से बड़ा और जगत में कोई मार्ग है नहीं, ऐसा समझ लो कि संसार समुद्र में गुरुदेव श्री की वाणी तत्व ज्ञान वज्र के किले में हमको सुरक्षित कर दिया है। बाल बांका होने वाला नहीं है, धरती पर बाल बांका होने वाला नहीं है, जब तक ये वाणी जिसके हृदय में है उसका बाल बांका होने वाला नहीं है। विश्व भी प्रतिकूल हो जाए, विश्व प्रतिकूल हो जाए, जिसके जिनेश्वर की वाणी चित्त में बैठ गई उसका कभी कभी अहित नहीं हो सकता, कभी अहित नहीं हो सकता। समय ज्यादा हो गया, अभी विराम लेते हैं।